کریا مانو, اور کوئی گوپی کو پوتنا بن گئی, اور کوئی گوپی جو ہے کرشن بن کر, کوئی دوسرے راکھس بن گئی کرشن بن کر اس کو مارنے لگی. اس لیے یہاں پر گوپیاں کرشن چنتا میں اتنی آبشت ہو گئی, کرشن لیلا کو انکرن کرنے لگی. یہاں پر اس کو بعد میں وہ لوگ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر کے کرشن کو, تو جب جمنا کنارے میں جب ان لوگوں نے جا کر دیکھتے ہیں رادھا جی کو بھی مان ہو جاتی ہے, کرشن رادھا جی کو بھی چھوڑ کر کے امل چلا چلے جاتے ہیں. وہاں پر گوپیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے رادھا رانی کی جب ملتے ہیں, دیکھتے ہیں رادھا بھی ایسے دکھی ہو کر پڑی ہے, وہ بھی بےوس ہو کر پڑی ہے. پھر تو گوپیاں ان کو بےوس ہو ان کو مورچا بھنگ کرتی ہیں. پھر ساری گوپیاں بیٹھ کر کے گوپی گیت گان کرتے ہیں. یہ سیمت بھاگوت میں گوپی گیت ہیں, کہتے ہیں جیتی دھکم جنمنا برج شرت اندرا سسوتر ہی دائت درکتام دکتاب کا. ایسے وہ لوگ ایک بھاگوت میں گوپی گیت ہے کہتے, وہ گوپی گیت جب گان کیا نا وہ گوپی گیت میں اتنی آکرشن ہے, کہتے ہیں بھگوان سوئم کیرتن کو دوارا بھگوان سوئم وہاں پھر پرکٹ ہو جاتے ہیں. منمت کا منمت روپ میں پھر بھگوان پرکٹ ہوتے ہیں گوپیوں کے پاس میں. پھر وہاں پر گوپیوں نے ان کو پکڑ کر کے بہت ساری پرشن کرتے ہیں بہت ساری پرشن کرتے ہیں. اس لیے یہ جو استھان ہے یہ استھان بنسی بٹ ہیں جہاں پر کرشنا گوپیوں کے ساتھ میں یہاں پر راس رچایا تھا. ہم جب مندر میں جائیں گے نا اور بھی ایک کتھا سناؤں گا. کرشنا سبھی بچے کرشن کو سوچتے ہیں یہ کرشن بھگوان ہو کر کے یہ گوپیوں کو لے کر کے اس راس رچایا, اتنے پرس پرائی استریوں کو لے کر کے اس راس رچایا, رادھا رانی کو لے کر انہوں نے راس رچایا بھگوان ہو کر کے. اسے بھگوان کے اوپر میں کوئی بھی لوگ کرتے ہیں بھگوان کی نندا کرتے ہیں, لیکن یہی راس لیلا کا دوارا بھگوان جگت میں دکھایا. بھگوان کا یہ جو راس لیلا ہے کام وجے لیلا ہے. ہمارے سریدھر سوامی کہتے ہیں یہی راس لیلا کا دوارا بھگوان دکھایا ہم کام وجے, کام کا اوپر میں ہم نے وجے پراپت کیا ہے, کام کو میں نے جیت لیا ہے. کیسے بھگوان یہی راس لیلا کا دوارا کام پر وجے پراپت کیا. ہم جب مندر میں جائیں گے نا وہاں ٹائم ملے گا تو ہم بہت بڑھیا کتھا سنائیں گے بھگوان اسی لیلا کا دوارا کیسے کام پر وجے پراپت کیا ہے. ہم ابھی دوسرے جتنے بھگوان کا سیوا کرنے والے پورش روپ میں آئے اس مجھے سرپ دامودر ہے. کون ہے للتا؟ للتا ہے رائے رامن ہمارے روپ گوسوامی اور سناتن گوسوامی تو لبنگ منجری ہے, اور ہمارے رگھناتھ رسی منجری ہے, گوپال بٹ گوسوامی پورا منجری اور انگ منجری ہے. اسی روپ میں اسی روپ میں آئی ہاں جتنے سخیاں آئے سب گور لیلا میں پورج روپ میں آئے, اور مہاپرو لیلا میں جتنے سے بیشت آئے. کہتے ہیں مہاپرو کو ہم لوگ جو حاضر ہے نا اگر وہ شرنگار رس میں اپاسنا کرنے جائیں گے ان کو, جو مادھور جو شرنگار رس میں جو کہ کرشن کے ساتھ میں گوپیوں کے ساتھ میں کیا سمپرک تھا اور رادھا رانی کے ساتھ میں کیا سمپرک تھا, کس روپ میں ان کو پریم تھا. ہم جیسے بدھ جیوی ہے نا ہم لوگوں کا جو بدھی ہے وہ جڑ بدھی جس پہ ہے اور سنسار کی واسنا جس پہ, اتہ ہم بھگوان کا جو ارنت اجول جو رس ہے جو گوپیوں کے ساتھ میں جو شرنگار رس کو جتنا لیلا ہے جب اس کو ہم جیسے سادھارن جی سننے کے لیے جائیں گے نا ہمارا اس جڑ جگت کا ادیپن آئے گا, اس جڑ جگت کا کام بھاونا ہی ہمارا ہردے میں آئے گا. کیوں ہمارا ہردے بھی انرتھک رکھتا ہے کام کرودھ لوبھ مدماشچرجے میں ہردے بھرا پڑا ہوا, اس لیے وہ لیلا کا جو دیوتو اپراکرتتو ہم لوگ کا ہردے میں اپلبدھ نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں شریمن مہاپربھو کو اگر کوئی داسیہ رس میں ان کو اپاسنا کرے مہاپربھو کو ان کو پربھو مان کر کے اپنا داس مان کر کے اگر یہ داسیہ رس میں اگر لیکن آپ کا پرویش کہاں ہوگا کہتے برج میں شرنگار رس مہاپربھو ہم داسیہ رس میں اپاسنا کریں گے ان کو پریکرموں کو بھکتوں کو داس بھاونا سیوا کریں گے. لیکن اس لیے کہتے ہیں گورو پریم رسار نبے سے ترنگے جیبا ڈوبے سے رادھا مادھو انترنگ. کہتے ہیں یہ گور پریما رس ارنب ہے مہاپربھو کو پریم روپی جو ارنب جو سمندر میں اگر اسی میں کوئی گوتا لگایا تو اسے کیا ہوگا
कहते हैं राधा माधव अंतरंग
के निकलते,
कहते हैं वे राधा माधव सेवा में प्रवेश उनको मिल जाता है। ये महाप्रभुला में एक वैशिष्ट कथा है, इसलिए महाप्रभु का जितना परिकर लोक है, महाप्रभु के साथ में जितना व्यवहार है, सब शास्त्र का व्यवहार है। लेकिन इसको साथ में महाप्रभु उनको जो मूल उद्देश्य था महाप्रभु का जगत में आने का, वो राधा प्रेम राधा भाव का आस्वादन करना, और कृष्ण में क्या माधुर्य है वह आस्वादन करना महाप्रभु का जगत में आने का, ये मूल उद्देश्य था। इसलिए वह जो रस है हर जगह में महाप्रभु प्रकाश नहीं किया, केवल इन्हें गिने कुछ अंतरंग भक्त थे जिनके पास में वह भाव का उन्होंने प्रकाश किया, क्योंकि वो चीज को तो कभी कोई नहीं समझेंगे। क्यों कहते हैं अभी श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में विभाजित है, राधा जी की कब किसी समय वो कौन सा भाव में रहती है, और कृष्ण को तो साथ में उनको क्या संपर्क है, और कब कैसे उनको अंदर में वो प्रलाप वर्णन और क्या क्या भावना उद्दीपना होती है, ये सभी दिमाग का वस्तु नहीं है। इसलिए स्वरूप दामोदर राय रामानंद सिक्की माइती और माधवी देवी ये महाप्रभु गिने गिने अंतरंग भक्त है, जो कि केवल महाप्रभु उन्हीं लोगों को साथ में महाप्रभु जो काम के लिए कृष्ण महाप्रभु का रूप में आए राधा भाव राधा चंद लेकर केवल उनको साथ में वही रस आस्वादन करते थे। और ललिता विस्तार का तो राधा जी की एकदम खास व्यक्ति है, इसलिए राधा जी किस समय कैसे क्या भावना उनके अंदर में आती है उनको ही पता चलता है। इसलिए और जैसे हमारे रूप गोस्वामी है सनातन गोस्वामी और जो विशेष विशेष जो परिकर लोग हैं वे लोग समझते थे महाप्रभु के अंदर कौन सा भाव, इसलिए रूप गोस्वामी जी उनकी भावना समझ करके महाप्रभु एक किसी जगत का एक साधारण ग्रंथ का किसी जगत जड़ कवि का एक श्लोक को लेकर के महाप्रभु वह रस आस्वादन करते थे। एक साधारण एक श्लोक है लेकिन उसी अनुरूप श्लोक रूप गोस्वामी ने उसको तालपत्र में लिखा है, उसको देख करके महाप्रभु बहुत खुश हो गए, कहा तू मेरा भाव को कैसे समझ गया, हम क्या बोलने चाहता हूँ मेरा अंदर भाव तुम कैसे समझा। इसलिए महाप्रभु बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर उन्होंने ऐसे कुछ बताया उन्होंने तो
संपूर्ण रूप से आपकी थोड़ा सा उधर जा रहे हैं, ऐसा तुम लोगों का जीवन में ना हो,
आज तो आ गया पार्टी
हमारा सौभाग्य था भी आ गया हमारा आज हमारा सौभाग्य जो प्रेमा में भी हमारा सौभाग्य उन्होंने कहा मैं जान सको किसी के साथ चर्ची भी गया बीच में कुछ नहीं हुआ तेरी पंक्ति की तरफ में ऊपर से पढ़ो ऐसा मत करो, है तो घर में जाकर के पढ़ो लिखो बीच में करो और हजूम और नहीं यदि ऐसा नहीं होता है तो एकदम सब कुछ उसको भी तो सकते हैं आ जाओ हम उनको रखें।
तो कुछ तो महाराज आए थे इस्कॉन वर्सेस यहाँ पर पहले काफ़ी समय पहले इस्कॉन में आते रहे वहाँ जाते रहे वहाँ के नियम वगैरह इन्होंने पालन किए फिर इधर मतलब अभी फिर से भी ये पूरी चिंता नहीं आ सकी
किसी में
लेकिन लेकिन बढ़ती जा रही है बड़ी तेजी से इनकी, ये एक शुभ लक्षण जैसे श्रद्धा बढ़ रही है तो शुभ लक्षण नहीं है महाराज
बढ़ रही है तब तो आज बढ़ रही है अलग हो गया तब अच्छा
हो गया बढ़ेगी क्यों भाई बढ़ेगी या घटेगी।
शुभ लक्षण तो है महाराज ऐसी हमारे लिए तो शुभ लक्षण
से उठा के माला दे देता है, बोलते जब करना शुरू कर दे
तो करो।
पर यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ कैसा होता है क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें। तो मैंने कहा कि यहाँ महाराज ही रहते हैं, उसके अंदर फोर्स डाल के देते हैं। तो बोलते इसका मतलब है वो उसे दीक्षा कहते हैं या दीक्षा मंत्र बाद में देते हैं?
पहले दीक्षा मंत्र होता है, इसके बाद में माला देते हैं।
दीक्षा मंत्र का मतलब है कि महाराज से पहले दीक्षा देते, ताकत दे दी तो दीक्षा होगी ना।
पहले दीक्षा देने के बाद में सब चीज दीक्षा शिक्षा हो जाती है, सब कुछ माला। ये सब शिक्षा दीक्षा हो रही है, ये सब शिक्षा का अंग है।
ये जो पढ़ रहे हो सुन रहे हो ये शिक्षा
दीक्षा, कैसे कैसी बातें बोलता है ये सब शिक्षा शिक्षा का अंग है। जब इसमें पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी तो इसका मतलब है ये हरिनाम का भी जाएगी। इसके पहले
इसी का हरिनाम है।
पूर्वेश्वर श्रीमती राधिका जी का मंदिर, उनको कार्तिकेश्वरी भी कहते हैं, सूर्येश्वरी भी कहते हैं राधिका जी, क्योंकि जगत को ऊर्जा देने वाली है। यहाँ तक कि कृष्ण को भी ऊर्जा से संपन्न बनाती है। यदि कृष्ण माइनस राधा रहे तो वो निर्विशेष ब्रह्म बन जाएंगे। इसलिए श्रीमती राधिका जी ऊर्जा की मूल स्रोत है। वह स्रोत ऊर्जा भक्ति के श्रद्धा से आरंभ कर और महाभाव की अंतिम छोर तक यह ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा का महीना। इसमें भी हम देखते हैं कि कृष्ण की जितनी भी प्रधान लीलाएं हैं इसी महीने के अंतर्गत में हुई। कृष्ण ने अपनी सर्वोत्तम लीला रास लीला इसी महीने के प्रारंभ में उन्होंने प्रारंभ की। इसी महीने में चंद्र एक स्थान पर बने रहे, तट से मठ नहीं हुए और ब्रह्म रात्रि बीत गई, पूर्णिमा चांदनी एक ही रात रही और रात इस महीने में हुई। इसमें रात लीला संपर्क में जितनी भी लीलाएं हैं इसी महीने में संपन्न हुई। इसी महीने में पवित्र महीना है जिसमें अपूर्व जी ब्रज में आए और आकर के कृष्ण और बलदेव जी को मथुरा में ले आए। इसी महीने के अंतर्गत में अभी कल ही पीछे जो बीत गई कल दसवीं के दिन में कृष्ण ने कंस को मारा, चारु मुस्टिक इत्यादि को मारा, जिसने असुरों के सरदार से सब लोगों का संहार किया, बल्कि संहार से नहीं कर सकते हैं सबका उद्धार किया, उनको मुक्ति तक दी। इसी महीने में कृष्ण ने गोपाष्टमी की, कृष्ण की गोपाष्टमी दो जब पौवंत अवस्था में थे तो उन्होंने छोटे छोटे बछड़ों को चढ़ाया बछड़ियों, और जब वो पौवंत अवस्था से धीरे धीरे वयस संधि में निकले, किशोर अवस्था की प्रारंभिक स्थिति, तो उन्होंने गोचारण किया। पहला हुआ वृंदावन में छठीकरा में, और दूसरा हुआ नंदगांव में। इस तरह से हम देखते हैं कि यह महीना बहुत ही पवित्र है, इसमें कृष्ण की अधिकांश लीलाएं इसी महीने में हुई। इसी महीने में यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने प्रेम रूपी रज्जू से उनका कमर में उदकल में बांधा। उन्होंने तत्व की तत्व को जानने वाले भक्तों को उन्होंने दिखलाया कि मैं बिना प्रेम के नहीं बन सकता। लौकिक संबंध भाव जिसमें हो, ऐसे प्रज का वास्तव्य भाव और सर्वोपरि मधुभाव उनको बांध सकता है, मैं उनके अधीन हो सकता हूं, दूसरों एक भावों के द्वारा मैं बंधन में नहीं आ सकता। यशोदा जी ने बांधा और नंद बाबा ने उसे खोला। गोपियों ने इसी महीने के अंदर में रासलीला के दिन ही श्रीमती राधिका से कृष्ण को बांधा। इसलिए एक तरफ में वो यशोदा दामोदर हैं वात्सल्य रस के, और दूसरी में वो राधा दामोदर है। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो नंद लीला सेवाय। ये इसी महीना में ऐसी ऐसी, इसलिए मैं कार्तिक महीने को नमस्कार करता हूं। और मेरे वो खंड हैं जो इस महीने में जिनका जन्म हुआ है, जिनमें मैं प्रभुपाद जी के अंतरंग सेवकों में से अन्यतम परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रमिश्र ओम विष्णुपाद अशोक सत्यमत शक्ति दई माधव गोस्वामी महाराज जी का विभाव इसी महीने में इस एकादशी को हुआ, जिसको उत्थान एकादशी कहते हैं। आदि जिस महीने दिन में श्री गौरकिशोर दास महाराज जी का शिरोभाव, गौरकिशोर दास महाराज जी का शिरोभाव होने से भक्त लोग विरह में उठ जाते हैं, किंतु इन्होंने उसी दिन में प्रकट होकर के जो विरह में मुझे अनुभव रहे थे, ऐसे लोगों को उत्साह दिया कि देखो शिरोभाव और आविर्भाव वैष्णव का भगवान का एक ही साथ सत्य पर है। एक आदमी का शिरोधान होता है, दूसरे का ये सब जगत के कल्याण के लिए होता है। इसको इसकी व्याख्या करने में बहुत सारा समय चला जाएगा, इसलिए इधर मैं अधिक न बोल करके मैं अपने यथार्थ विषय पर आ रहा। आज का दिन, आज ही के दिन में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद कृष्ण भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव। इनके संबंध में आप लोगों ने बहुत कुछ हमारे शुभ वक्ता परम पूज्यपाद श्री भक्ति प्रापम दामोदर महाराज जी के निकट आप लोगों ने समझ लिया। ये बहुत दिनों तक उनके संग में रहे, इसलिए इन लोगों की साक्षात अनुभूति है। हमें भी कुछ दिन उनका संग मिला, हमारे भी वो शिक्षा दी। जब भी वो यहाँ आते थे हमें जरूर बुलाते थे, विशेष करके आज के दिन, आज अपने आविर्भाव के दिन में गुरु गुरु का सम्मान करते थे। हमने कहीं कहीं देखा उस व्यास पूजा की पद्धति को, और श्री माधव महाराज जी के व्यास पूजा पद्धति से मैंने मिलान किया। मैंने सर्वथा इनका एक अभूतपूर्व वैशिष्ट्य देखा। हमने देखा बहुत से लोगों को अपने जन्म के दिन में व्यास पूजा कराते हैं, खुद नहीं करते, उनके शिष्य लोग उनकी पूजा करते हैं और अपने शिष्यों से अपनी पूजा कराते हैं। चिंतपुर के बाद माधव महाराज जी को ऐसा कभी जीवन में मैंने नहीं देखा। बहुत वर्षों से करीब करीब 50 वर्ष हम आए हो गए आश्रम में, कभी समय देख रहा हूं। यहां पर सभी पूज्य वैष्णव लोगों को बुलाते हैं, जितने ब्रज के पंडे हैं उन सबको भी बुलाते, ब्रजवासियों को बुलाते, अपने गुरु भाइयों को जो छोटे से बड़े तक सबको बुलाते और बुला करके अपने अपने हाथों से उनको माल्य चंदन और वस्त्र सब दान करते। अपने गुरु भाइयों को तो दान करते, ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। गुरु जी की पहले अपनी पूजा करते, अपनी परंपरा की पूजा करते, ये प्यार पूजा इसको कहते हैं। अपनी पूजा ग्रहण करें, प्यास पूजा के दिन हम अपने गुरु परंपरा की पूजा करेंगे, ये उन्हीं के समय उनके अंदर देखा। और अपने नित्यलीला पवित्र श्रील भक्ति प्रज्ञान के गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में देखा कि अपनी पूरी गुरु परंपरा कृष्ण पंचा, प्यास पंचा, गुरु परंचा, आचार्य पंचा सबकी विधिवत। आज का दिन अपने जन्म के दिन में आचार्य अपने गुरु परंपरा की ब्रह्मा से लेकर और अपने गुरु तक सबकी और अपने गुरु भाई सबकी पूजा करता है। हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के मन शिक्षा में देखा, गुरु गोष्ठे गोष्ठा सुजने गुरुगने समंती मंत्रे श्री नाम ली व्रजवदन विसरे सदा संभम जिस्वा रति अपूर्वा अति सराम कहे भ्रात सत्पदे पदे जा सत्पदे। कैसे लोगों को सम्मान करना चाहिए? ब्रजवासी सब लोगों का पहले सम्मान करते थे, ब्राह्मण को भी सम्मान करते थे, अपने गुरु भाइयों का सम्मान करते थे, ये आते थे। हमने देखा है परम पूज्य पाद भक्ति गुरु महाराज जी ने भक्ति प्रमोद पुरी महाराज कितना उनको सम्मान देते थे, अभी तक ये लोग वैसा सम्मान देते हैं। वैसे गुरु भाइयों को अपने गुरु भाइयों को सम्मान देते हुआ नहीं देते। जितने गुरु भाई हमने दिन बंधु दास बाबा जी को देखा नंदगांव में भजन करते, कोई जानता था कोई नहीं जानता था, अंत में निराशित हो जाने के बाद अपने पास में बुला लिया और उनकी सेवा करते थे, रुपये से, पैसे से, खाने से, कपड़े से, लत्ते से, सब प्रकार। गुरु भाइयों का यह सम्मान, ऐसा नहीं कि जन्म के लिए माला दे दिया और आप जाइए बस, या किराया दे दिया। पूछते थे कि तुम्हें दुख कष्ट क्या है, कैसे भजन कर रहे हो, ये सबका सबका विचार रखते थे, ख्याल रखते थे। आज कल हम ऐसा नहीं देते, आज गुरु भाइयों को सलाह दो कि ये गुरु सेवा सबसे बड़ी है, मेरे अस्तित्व पर कोई गुरु भाई नहीं है, ऐसा नहीं। ये सब जब भी सीखना है तो ठीक है, जीवन के अवसर से हम लोग सीखते। हमने देखा मैं उनका शिष्य भी नहीं, किंतु मैं अपने को उनका शिष्य शिक्षा शिष्य के रूप में मैं यहां आता और हमको भी गले यहां पर तिलक देकर के, माला देकर के, अपने हाथों से कपड़े देकर के प्रणाम करने जाते, हम लोग सत्तांग उनके चरणों में लुट जाते। ये सब वैष्णव का आदर्श है, बिना कभी सुने के न करो अपनी कहीं सुनना अमानी न मान दे न तो सिंह न सुधा। आज कहां वो आदर्श गया? आज जब ये देखता हूं कि परस्पर गुरु भाई लोग लड़ते हैं परस्पर, भोजन की थाल उनसे निकाल दी जाती है, ये सब कहां गया उनका आदर्श? इसलिए हम लोगों की यह दुर्दशा है, हम लोगों को यह सब चीजों को समझना चाहिए। आज आदिभाव या दिवस के दिन में हम अपने गुरु जी का जीवन चरित्र स्मरण करेंगे और उसकी एक एक बातों को आदर्श रूप में रख करके उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। ये गुरु सेवा है, गुरु सेवा ये नहीं पुष्प माला दे दिया, उनके कोई जीवन से संबंध नहीं, उनकी शिक्षाओं को हमने जीवन में ग्रहण नहीं किया, वो गुरु सेवा मैं नहीं मानता। ये हमारे परंपरा का आदर्श नहीं है, ये धारणा नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये सब चीजें सीखनी चाहिए पूरी के जीवन से। यही नहीं, हम लोग आजकल ब्रजवासियों को कोई सम्मान नहीं देते, कैसा सम्मान देते थे, ब्रजवासी है ना, कृष्ण का सम्मान करते हैं लोग, वो सूजन है पृथ्वी के, वो एक तरह से गुरु उनको माना गया। भले ही नहीं उतना हम लोगों जैसे एकांतिक में महाप्रभु के अंतर्गत हो या रूपांग वैष्णवों के अनुसार में या कृष्ण के एकांतिक भक्त नहीं होने पर भजन तो कुछ करते ही हैं, उनका सम्मान देते थे उन लोगों को भी। ऐसे हमने देखा एक बार गया अस्वस्थ होकर के चैतन्य गौड़ जीवन कलकत्ते में मैं गया, बड़े आदर के साथ में हमको रखा, हमारी चिकित्सा का सारी व्यवस्था उन्होंने कराई, जो कुछ व्यवस्था था वो सब अपने हाथों से देकर के पूछते थे कि ठीक है कैसा है, वो सब अपने आप से। मैं वहां पर 10-5 दिन रहा, एक दिन जैसा नीचे मंदिर के आसपास में कहीं तोड़ दूर हो रहा, मैं वहीं से कहीं से बाहर से आ रहा था, पूर्व में देखा कि हमारे युग्म नामधारी हमारे ये प्रभु जी वहीं पर बिल रक्त में थे, बिल रक्त समझते हैं ना, बिल रक्त में थे, इनको कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था, कोई ऐसी बात हो गई थी जो सामंजस्य नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसी कुछ किसी ने गड़बड़ी कर दी थी और ये एकदम बिगड़े हुए थे। ऊपर से आए मानो एक घड़ा पानी लेकर के सुशीतल गंगा जल इनके सिर पर ढाल दिया और ऐसे सुंदर रूप में धीरे धीरे मुस्कुराते हुए इनके सिर पर हाथ ऐसे रख करके ऐसा समझाया कि ये पानी पानी होकर के फिर उनके चरणों में घुसे। ऐसा कोई कर सकता है? मैं देख करके आज तक चकित हो गया और शिष्य पर इतना बात संजभाव, इनको ये साधारण पुरुष नहीं है, एकांतिक हैं, किस बड़े तेजस्वी हैं ये। ऐसे लोगों को काबू में रखना, हमारे जैसे दुर्दांत आदमी को काबू में रखना ये साधारण बात नहीं थी, किंतु कैसा उनका आदर्श था, कैसा उनका विचार था, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के साथ में रखते थे मानो 10-20 सिंहों को और बाघों को साथ में रखते थे। आज देखो वो चले गए तो क्या हो गया, सब बाघ अपने मान से निकल करके कोई इधर दहाड़ मार रहा कोई इधर दहाड़ मार रहा, ये लोग में शक्ति थी, जने जने शक्ति धरे ब्रह्मांड का जी, ऐसे शक्तिशाली थे। उदारता की तो पूछो नहीं, बिना रफी सुने तरो रफी रफी सुनता, हमने इनके अंदर में देखा एक विशेष रूप से देखा। क्या देखा? आजकल हम देखते हैं कि यदि एक भाई की शिष्य करता है मठ से निकाल दो इनको, गेट आउट फ्रॉम दी मठ, ये शिष्य करने लग गया उसको निकाल दो। हमने देखा परम पूज्यपाद महाराज जी को, पर्वत महाराज जी को आप लोग जानते होंगे जिनकी समाधि आजकल बनी है ना वहां गोवर्धन में आनर रोड पर, वही पासी में निवर्तन कुंड है, दान निवर्तन कुंड वहीं पर है, उन्होंने शिष्य किया और उनका शिष्य जबकि प्रणाम करने आता तो उसको बहुत आशीर्वाद देते थे। इसके लिए भी जरा हृदय में वैसा उदारता से उनका शिष्य आकर के उनको प्रणाम करता, उस शिष्य का शिष्य उनके जीवित उनके प्रकट अवस्था नहीं किया उसने, किंतु हमारे समय से कभी नहीं कहा होगा कि तुम शिष्य मत करना, दूसरे हम लोगों में से कोई कहा हो सकता है, उन्होंने कभी नहीं माना। उनके शिष्य का शिष्य वासुदेव कृष्ण को आप लोग जानते हैं, शिष्य जो पुराने होंगे उनको जानते होंगे, अजमेर में फिर से उन्होंने आश्रम इत्यादि बनाया, उनके शिष्य लोग आते थे तो ये सोचते थे कि हमारा पोता आ गया, पोता माने नाती, जे रकम है बाबा जी के नाती के खिलाए को देते, ऐसे ले देते थे। ये लोग कहते कि मत जाइए गुरु जी वहां, और उनको निमंत्रण करने आया जो पूरी महाराज जी का शिष्य था, लंबा चौड़ा वैसे ही खाम पहनता था, नाम याद
है
पर्वत नहीं एक दूसरा था, अपना नतून शरीर छिलो गुरु महाराज शिष्य कुछ दिन था रहना टाना ये सब तापरे शिष्य पत्र कर लो हाँ मठ कर लो पीछ बोले गुरु महाराज हमारे मठ का प्रतिष्ठा करते हो কি করল বলে আমি যাব যে করো দিয়ে আসলেন না কত উদা আসবে আজকাল কেউ করতে পারে আরে আমার দু ভাই যদি মোট করে তাহলে ওখানে আমি কৃষক করে তাহলে যাবো কত উদারতা থাকা চাই সেনা দাবি তুমি চাই অমানি চাই আর মানব চাই এইসব বলি প্রত্যেক মূর্তি শুনেছি আজকাল এইরকম অভাব জগতে এই জন্য বলি যে তিনি কত আদর্শ পুরুষ ছিলেন। আজকাল যদি শিষ্য আমার সামনে যদি আমার যদি গুরু যদি গুরু যদি কাজ করে তাহলে তখন তাহার কাজ ঘরে বাহার করে আচ্ছা একে সংসারের মধ্যে এই বিচারটা তো ঠিক আমি মানি কিন্তু একটা বিচার আমার হৃদয়ের মধ্যে আছে যদি একটা বাপ আছে তাহার ছেলে হলে ছেলেটা বড় হলো তার বিবাহ দিল তো বিবাহ দিল কিসের জন্য যে তোমার ছেলে জন্য না হয় আর কি তাহার